वस्तुतः उन जीव वे जीव हिंसा जीवी हैं, उनको धर्म के उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। यह सुनते बुद्ध भगवान मुस्कुराए और उसे हृदय से लगा के कहा, हाँ तुम जैसा तितिक्षावान उपदेश करने का अधिकारी है। तितिक्षु ही सहनशील ही उपदेश कर सकता है, जिसमें सहन क्षमता नहीं वह उपदेश का पात्र नहीं। भगवान का यह अवतार और एक अवतार भगवान का होने वाला है, इसका नाम है कल की अवतार। विष्णु यश ब्राह्मण के यहां भगवान कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। संभल ग्राम में भगवान का अवतार होगा और विष्णु यश ब्राह्मण के यहां अवतार लेकर भगवान कलयुग का निग्रह करेंगे, अधर्मियों का विनाश करेंगे और इस पृथ्वी पर पुनः सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं को राजगद्दी सौंप करके उन्हें राजा बना देंगे। उसी दिन से इस पृथ्वी पर बिना प्रलय हुए सतयुग आ जाएगा। लेकिन ये अवतार कब होगा? कलयुग के अंतिम समय में होगा। कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु है। उस आयु में जब केवल 800 वर्ष अवशिष्ट रह जाएंगे तब अवतार होगा। 4,32,000 में से 5,000 से कुछ ऊपर तो चले जा चुके हैं और अब बाकी बचे हुए में से भी 800 घटा दो, उतना समय जब बीत जाएगा तब भगवान का अवतार होगा। दो अवतार और भगवान के हैं, उनका स्मरण सूत जी ने नहीं किया कर पाए। वो अवतार हैं हयग्रीव अवतार और हंस अवतार। ये आगे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद में इन दोनों अवतारों की चर्चा की गई है। तो हंस और हयग्रीव, इन दो अवतारों का स्मरण करने से और 24 अवतार भगवान के हो जाते हैं। हे ऋषियों, जैसे किसी विशाल सरोवर से हजारों झरने प्रकट हो जाएं, ऐसे ही भगवान के अनंत अवतार जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए होते रहते हैं। ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्राः महौजसाः कलाः सर्वे हरे देव सप्रजापतयस्तथा। ऋषि मनु देवता मनुपुत्र ये सब भगवान की ही कला हैं, प्रजापति ये सब भगवान की ही कला है, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते अंशाश्च कलाश्च, ये अंशावतार कलावतार हैं, श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्ण परमात्मा हैं और वे भगवान यह युग युग में अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के संपूर्ण जीवों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, उनका हित करते हैं। भगवान परिपूर्ण हैं, इसलिए भगवान का कोई अवतार अपूर्ण नहीं हो सकता। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने तो लिखा है, जेत कहरी अवतार सवे पूर्ण कर जाने। और श्रीमद् भागवत की विजय ध्वज टीकाकार ने भगवान के समस्त अवतारों को पूर्ण माना है और ये माध्व संप्रदाय के आचार्य हैं। माध्व संप्रदाय से संबद्ध ये महान आचार्य हैं, समस्त भगवान के अवतारों को पूर्ण माना है। देखो, भगवान अपूर्ण नहीं तो भगवान का स्वरूप अपूर्ण कैसे हो सकता है? पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ले लिया जाए तो भी अपूर्णता नहीं आवेगी, तो भी पूर्ण ही रहेगा। फिर अंशावतार और कलावतार क्या है? कहते भगवान जिस अवतार में असुर विनाश के लिए आते हैं, दुर्जनों का संहार करने के लिए आते हैं, उस अवतार को अंशावतार कहा जाता है। और जिस अवतार में मुमुक्षुओं को ज्ञान का उपदेश करने के लिए आते हैं, वो कलावतार कहा जाता है। और जिस अवतार में असुरों का संहार भी करते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं, मुमुक्षुओं को तत्व का उपदेश भी देते हैं, वो परिपूर्ण अवतार कहा जाता है। जिस अवतार में जितने अंश की कला की आवश्यकता थी, भगवान ने प्रकट कर दिया। यह श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार, इसमें धर्म की स्थापना भी वही भगवान के द्वारा, असुरों का विनाश भी हुआ और प्रेमियों को ज्ञान का उपदेश भी हुआ। भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्रदान किया है। यह भगवान का अवतार पूर्णावतार है। इन भगवान के अवतार चरित्रों का जो स्मरण करते हैं, कहते सायं प्रातर ग्रणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुचते, सायंकाल प्रातः काल भगवान के इन अवतारों का जो स्मरण करते हैं वह संपूर्ण दुख समूह से मुक्त हो जाते हैं। प्रातः काल सोने के सोकर जगने के बाद इन 24 अवतारों का स्मरण करें और सोते समय भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करें तो दुख की निवृत्ति हो जाती है, संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। इसलिए सोते समय और जगते समय इन 24 अवतारों का स्मरण करना चाहिए। कोई कहे हमें याद नहीं रहेंगे 24, एक दो हो तो याद कर लो, 24 में कहीं न कहीं एकाध तो छूट ही जाएगा। तो कई छंदों में, पद्यों में, श्लोकों में इन अवतारों की चर्चा है। वे कंठस्थ किए जा सकें तो उन्हें कर लो, और नहीं तो श्री नाभाजी ने एक छप्पे में सभी अवतारों का स्मरण किया। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर, वज्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। ये 24 अवतार, छप्पे को याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। इस छप्पे को याद कर लें तो सायंकाल प्रातः काल भगवान के 24 अवतारों के स्मरण में सुविधा हो जाएगी। यह समस्त अवतार हम सब जीवों के ऊपर भगवान ने अनुग्रह करके ही लिए हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। अवतार चरित्रों का स्मरण करने के बाद कह रहे हैं इदं भागवतं नाम, इसका तात्पर्य है भगवान के अवतार चरित्रों का ही नाम है भागवत। और अभी आप लोग द्वितीय स्कंध में श्रवण करेंगे, ब्रह्मा जी ने भी अवतारों का निरूपण किया तो अंत में क्या, इदम भागवतम नामो यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद विपुली कुरु, वहां भी कहा इदम भागवतम नाम। इसका तात्पर्य है भगवान के लीलावतार चरित्रों का ही नाम है भागवत। यही भागवत का तत्व है। हे ऋषियों, इस भागवत दिव्य ग्रंथ का श्रवण हमने श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से किया। राजर्षि परीक्षित उपवास पूर्वक प्रायोपवेश पूर्वक गंगा जी के तट पर विराजमान थे, अनंत ऋषियों की मंडली के मध्य विराजमान थे और वहीं मैं भी पहुंच गया। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वश्रावयिष्यामि यथाधीतम यथा मति। उनके अनुग्रह से मैं भी वहीं बैठ गया और मैं भागवत की कथा का श्रवण कराऊंगा यथाधीतम यथामति, जैसी हमारी अल्प बुद्धि में जो कुछ धारण हो सका है उसको यथामति यथा समय में सुनाऊंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सौनक जी उत्तम कोटि के श्रोता हैं, मैं सुनाऊंगा या सुनते ही व्याकुल हो गए और उस व्याकुलता में उन्होंने सूत जी को दो बार नाम लेकर पुकारा, सूत सूत महाभागो बदनो बदतांबर, प्रशंसा भी करें बदतांबर अस्माकम न बद, हे सूत जी, हे सूत जी, ओ बड़े दयालु हैं आप, तो भगवान की कथा कहने वालों में बड़े श्रेष्ठ कथाकार हैं, आप कृपा करके हमें भगवान के चरित्र को सुनाइए। सुखदेव जी के मुख से जो कुछ आपने सुना है वह आप कृपा करके हमें सुनावें। सबसे पहली बात तो भागवत का प्रादुर्भाव कब हुआ, व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत को प्रकट किया, आप यह बतावें। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि व्यास जी ने भागवत का ज्ञान सुखदेव जी को प्रदान किया, तो अभी तो हम आपके मुख से सुन चुके हैं कि वे विरक्त होकर के जंगल में चले गए, फिर भागवत ज्ञान देने का अवसर कब प्राप्त हुआ? तस्य पुत्रो महायोगी शमद्रंग निर्विकल्पकः एकांत मर्त्युर्निद्रः गूढ़ो मूढ़ इवेयते। वे ऐसे महात्मा सुखदेव जी जिनकी स्त्री पुरुष की भेद दृष्टि भी जिनमें समाप्त हो चुकी है, स्त्री पुंभिदा नतुसुतस्य विविक्त दृष्टे दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्मजमप्य नग्नम देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष प्रक्षत मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा नतुसुतस्य विविक्त दृष्टे। ऐसा ज्ञान जिन श्री सुखदेव जी महाराज का है, उन सुखदेव जी ने आकर कथा कैसे सुनी, इस संबंध में संतों की समाज में एक कथा प्रचलित है। वो कथा ये है, व्यास जी के शिष्यों ने एक बार व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, हम जब जंगल में समधा लेने जाते हैं, कंदमूल फल लेने जाते हैं, तो हमको बड़ा भय लगता है, सिंह का, व्याघ्र का, हाथी का भय लगता है, आप कुछ ऐसा उपाय बतावें कि हमको भय न लगे। व्यास जी ने प्रसन्न होकर कुछ भागवत के श्लोक कंठस्थ करा दिए और कहा, जहां जंगल में भय की प्रतीति हो तो प्रेम पूर्वक इन श्लोकों का गायन करोगे तो तुम्हारे भय की निवृत्ति हो जाएगी। अब तो वे ब्रह्मचारी एक जंगल में पहुंचकर श्लोक का गायन करने लगे। सौभाग्य से सुखदेव जी उसी जंगल में विराजमान होकर ध्यान में, समाधि में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी व्याकुल हो गए। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, भगवान के सगुण स्वरूप में कितना माधुर्य है उसका वर्णन है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान्वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वरहा पीतम, मयूर पिच्छ का बड़ा सुंदर मुकुट है। नटवर बपुहु, नट किसे कहते हैं, जो मंच पर अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए खूब सज धज के उपस्थित हो जाए और अपने नृत्य आदि के द्वारा दर्शकों के चित्त को आकृष्ट कर ले, मोहित कर ले, उसे नट कहते हैं। नटतीति नटाह नट अवश्यंदने, नट अवश्यंदने से नटह बंध, नटतीति नटह, इनसे बड़ा नट कौन होगा। ऐसी चटक मटक चाल है, ऐसी ललित त्रिभंगी है, ऐसी चाल है कि बेचारे कवियों के पास कोई उपमा नहीं है, इसलिए वो कभी कहते मत मराल की चाल और कभी कहते हैं मत गयंद की चाल और कभी कहते हैं मत वृषभ की चाल, लेकिन वस्तुतः वे उपमा के अभाव में ऐसा कहते हैं। वस्तुतः वे गजराज भी इनकी मतवाली चाल पर लज्जित हैं, मराल भी इनकी सुंदर चाल पर लज्जित हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी ये अपने रूप को, अपने नाम को, अपनी मधुराति मधुर लीला को प्रस्तुत करके सबके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इनका नाम ही है कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर ले उसी को कृष्ण कहते हैं, सबको खींच ले, सबका कर्षण कर ले उसे कृष्ण कहते हैं, ये सबको खींच लेते अपनी ओर। नटवर बपु, नटेषु वरः नटवरः, नटों में भी वे वर हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए नटवर हैं। और दूसरा अर्थ क्या हुआ, नट शब्द शिव का वाचक है, नट शब्द जो है शंकर जी का वाचक है, भगवान शंकर से बड़ा नट कोई दूसरा नहीं, बहुत बड़े नट हैं शंकर जी, नटराज राज हैं। सामान्य नट वो चंदन आदि से श्रृंगार करें और ये तो चिता भस्म से श्रृंगार करते हैं, विचित्र नट हैं। सोने चांदी के कड़ूला कोई धारण करे ये तो वलई कृत वासुकी ही, वासुकी नांग का तो कंगन पहन लेते हैं। भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः, ये लीला तांडव पंडित हैं, ये अद्भुत इनका, कोई नट अपने मस्तक पर मुकुट धारण करे, इन्होंने द्वितीया के चंद्रमा को ही मुकुट बना लिया है। गंगा इनकी जटाओं से उच्छलित होती रहती है, ये व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, गज चर्म ओढ़ लेते हैं, ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं भगवान शंकर, ये नटराज राज। लेकिन वे नटराज राज शिव को ही यहां नट शब्द से कहा गया, और वे नटराज राज शिव भी जब श्याम सुंदर के मधुर रूप का दर्शन करते हैं, इनके नृत्य का दर्शन करते हैं, तो उन शंकर जी के हृदय में भी गोपी भाव का उदय हो जाता है। वर माने क्या होता है, वर माने दुल्हा, वर शब्द का अर्थ है दुल्हा, तो नट माने शिव और वर माने दुल्हा, नट शब्द का अर्थ है शिव और वर माने दुल्हा, अर्थात शंकर जी के हृदय में भी माधुर्य प्रकट हो जाता है, वे भी त्रिलोचना गौरांगी गोपी बनकर के रास में प्रविष्ट हो जाते हैं और वे भी वर रूप में इनका वरण कर लेते हैं। गोपीश्वर महादेव आज भी वृंदावन में विराजमान, बोलो गोपीश्वर भगवान की, आज भी वृंदावन में विराजमान नटवर बपू। अथवा नट जो है वो विप्रलंब श्रृंगार का वाचक है और वर जो है संयोग श्रृंगार का वाचक है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग और एक विप्रलंब, तो विप्रलंब वाचक नट है और नट लीला वो विप्रलंब की लीला है और वर ये संयोग श्रृंगार, अर्थात जिन श्री कृष्ण के बपू में श्री अंग में संयोग और विप्रलंब दोनों श्रृंगार एक साथ विराजमान हैं, ऐसे भगवान ये श्याम सुंदर, ऐसा इनका स्वरूप है। आप लोग कहेंगे कि संयोग और विप्रलंब परस्पर विरुद्ध हैं, एक साथ एक जगह कैसे रह सकते हैं, यही तो ईश्वरता है। परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम, परस्पर विरुद्ध धर्म एक साथ एकत्रित हो जाए उसी को ईश्वर कहते हैं। अणोह अणियान महतो महियान, जो अणु से अणु होगा वो महान से महान हो सकता है, ये परस्पर विरुद्ध धर्म है, वो छोटे से छोटे हो बड़े से बड़े। नटवर बपू और कैसे हैं, बोले कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार का पुष्प है, पीला फूल जो कनेल का होता है उसको कर्णिकार कहते हैं। कर्णयो द्विवचन है और कर्णिकारम एक वचन है। वैयाकरण लोग तो कहते हैं कि जातौ एक वचनम, जाति में एक वचन होता है, तो कर्णिकारत्व जाति को कहने के लिए एक वचन कह दिया तो एक से भी अनेक कर्णिकारों का बोध हो जाएगा। लेकिन इस अर्थ में कोई विशेष चमत्कृति नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए जीव गोस्वामी जी का अर्थ बहुत आदरणीय अर्थ है। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज कर्णिकारम की टीका में कहते हैं, ये यह श्री कृष्ण का संकेत पुष्प है, एतत् श्री कृष्ण से संकेत पुष्पम, ये श्री कृष्ण का संकेत पुष्प है, कभी इस कान पर पधरा लेते कभी इस कान पर पधरा लेते हैं, तो दोनों कानों पर बदल बदल के पधराते हैं, इसलिए कर्णयोह कहा, और एक ही पुष्प है इसलिए कर्णिकारम एक कहा। इससे संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं, बोले जब श्री ठाकुर जी गोचारण के लिए चलते हैं तो नंद महल में अनंत ब्रज गोपियां एकत्रित हो जाती हैं, भावी विरह की कल्पना से उनका चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और वे विरह कातर नेत्रों से इशारा करके भगवान से पूछती हैं, हे प्राण जीवन धन, आपके बिना ये दिन कैसे कटेगा? दिन में कम से कम एक बार तो दर्शन हो ही जाना चाहिए। आप गोचारण करने जा रहे हैं, संजा को लौट के आवेंगे, तो आप कृपा करके यह बतावें कि आज किधर गोचारण करने जाएंगे। अब स्पष्ट वार्तालाप तो हो नहीं सकता, क्योंकि बड़े बूढ़ों की मर्यादा है, मैया बाबा हैं और दाऊ भैया हैं, तो कुछ न कुछ तो मर्यादा है ही है, कैसे कह दें। तो ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं, वे पुष्प के द्वारा संकेत करते हैं, इस दिशा को जाना है तो इधर से पुष्प उठा के इधर रख लिया, इधर जाना तो इधर से उठा के इधर रख लिया। तो गोपियों को तो उस पुष्प से संकेत प्राप्त हो जाता है कि आज ठाकुर जी को किधर जाना है, और जिधर ठाकुर जी जाते हैं गोपी उधर ही जाती हैं। चलो सखी वहां जाइए जहां वसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। वे गोरस बेचने का तो बहाना है, ठाकुर जी के दर्शन के लिए ही मुख्य रूप से जाती हैं, और प्रेम में इतनी उन्मत्त हो जाती हैं कि दूध और दही का नाम तक भूल जाती हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, दधि को नाम बिसर गई ग्वालिन, ले ले ओरी कोई श्याम सलोना। दही का नाम भूल गई और कहने लग गई, अरे कोई श्याम सुंदर लोरी श्याम सुंदर, अरे कोई नवनीत प्रिय लोरी नवनीत प्रिय, अरे कोई माखन चोर लोरी माखन चोर, अरे कोई नंद नंदन लोरी नंद नंदन। जिस झांकी जिस नाम में जिस रूप में उसका चित्त उस समय लगा हुआ है उसी नाम का उच्चारण करने लग जाती है। कर्णयो कर्णिकारम, ऐसा सुंदर कर्णिकार संकेत पुष्प उनके कर्ण के ऊपर सुशोभित हो रहा है। सजल नील मेघ के समान श्री अंग कांति है, और झिलमिलाता हुआ पीतांबर श्री अंग में सुशोभित हो रहा है, जैसे किसी नव घन में नव नवायमान सजल नीरद में शाश्वत भाव से विद्युत चमकने लग जाए, ऐसे ही झिलमिलाता हुआ पीतांबर इनके श्रीअंग में शोभायमान हो रहा है। बिभ्रद वाश कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, पांच प्रकार के फूलों से गूथी भई माला, इसी का नाम है वैजयंती माला। कौन कौन पांच प्रकार के पुष्प? तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई, तुलसी कुंद मंदार और पारिजात और सरोरुह माने कमल, इन पांच प्रकार के पुष्पों से बनाई हुई जो माला है इसको कहते हैं वैजयंती माला। वैजयंतीं च मालाम, वो वैजयंती माला कंठ से लेके चरण तक रहती है, चरण चुम्बनी माला, वो छोटी माला नहीं होती, कंठ से लेके श्री ठाकुर जी के चरण का चुम्बन करती है ऐसी माला। ये पांच प्रकार के पुष्प क्या हैं? ये भक्ति के पांच रसों के उपासक भक्त ही माला में पुष्प बनकर के विराजते हैं, और ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार, इन पांच रसों के भक्त ही पांच प्रकार के और वह भक्त हैं, यही पुष्प हैं, इनकी माला को भगवान धारण किए भय हैं। त्रिभंग ललित होकर के अपने कपोल को अपने बाएं कंधे की ओर झुका करके अपने अतिशय सुकोमल अधरों पर वेणु पधरा करके बजा रहे हैं। कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदः, अपनी सुंदर कोमल उंगलियों से उसके मार्गों को छिद्रों को दबा रहे हैं, और तिरछी चितवन से प्रेमियों की ओर देखते हुए वे मधुर वंशी नाद कर रहे हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। उनके दिव्य वेणु नाद को सुनकर के ग्वाल बाल व्याकुल हुए, प्रेम में बेसुध हो रहे हैं, और वे सब चारों ओर से श्याम सुंदर को घेरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, दंत दष्ट कवला धृत करणा, गायें भी खड़े कान करके जिनके मुखाग्र पर घास के तृण लगे हैं चबाना भी भूल गई हैं, वे गायें चारों ओर से खड़ी हो जाती हैं और श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं और ग्वाल वाल बीच बीच में प्रेमानंद में विभोर होकर कहते हैं, जय हो जय हो जय हो, वाह प्यारे वाह सखा, तेने बड़ी जोर की बंसी बजाई। वे सब प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम, भगवान वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं, वंशी वादन कर रहे हैं। वृंदावन का विशेषण क्या है? वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदावन कैसा है? स्वपद रमण है, अर्थात श्री ठाकुर जी के चरण कमल के स्पर्श से अतिशय रमणीय जो वृंदावन है, उस वृंदावन में भगवान गोचारण कर रहे हैं। त्रिभंग ललित भगवान अधर पर वेणु पधरा करके बजा रहे हैं, बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है। वृंदावन की महिमा क्या है, कौन कह सकता है वृंदावन की महिमा? देखिए, यह सौभाग्य जो ब्रजभूमि को प्राप्त है, वह सौभाग्य अन्यत्र किसी भूमि को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के निरावृत चरण कमल का स्पर्श उस भूमि को प्राप्त है। भगवान ब्रजलीला में पदत्राण धारण नहीं करते, निरावृत चरण कमल का स्पर्श भूदेवी को प्राप्त हो रहा है, ब्रजरज को प्राप्त हो रहा है। वही ब्रजरज है जिसमें ठाकुर जी के श्यामा श्याम के चरण कमल की रज विराजमान है। ऐसी सुंदर ब्रजरज की महिमा। भगवान का दिव्य धाम वैकुंठ है, लेकिन जो सौभाग्य वृंदावन की भूमि को प्राप्त है, वह सौभाग्य वैकुंठ को प्राप्त नहीं है। इसलिए स्वपद रमणम का स्वपदात वैकुंठात अपि रमणीयम, स्व स्वकीय पद अर्थात वैकुंठ उससे भी मनोहर वृंदावन, क्योंकि वैकुंठ को निरावृत चरण तल का स्पर्श प्राप्त नहीं। भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े हुए हैं, कहीं जाने की इच्छा है तो गरुड़ जी खड़े हैं, महाराज धरती पर पैर रखने का काम ही नहीं, गरुड़ जी पर विराजमान हो उड़ जाओ। शिविका वाहक शिविका लेकर खड़े हैं, दारुक सारथी रथ लेकर खड़ा है, नौका विहार में नौका तैयार खड़ी है। वहां श्री ठाकुर जी मान लो पैदल चलना भी चाहें तो अतिशय सुकोमल सुंदर जड़ाऊ मखमली पदत्राण भगवान के युगल चरण में पार्षद पहना देते हैं। भगवान सुंदर पदत्राण धारण करके चलते हैं, वो भी धरती पर नहीं, बड़े कीमती कीमती सुंदर गलीचों पर भगवान पदत्राण धारण करके चलते हैं। लेकिन ब्रज में तो ठाकुर जी ने नंगे पैर गैया चराई है, इसलिए यहां की भूमि को निरावृत चरण रज का स्पर्श प्राप्त है। इसलिए भगवान के चरण कमल के स्पर्श से मनोहर वृंदावन, श्री राधा रानी के चरण कमल से स्पर्श मनोहर वृंदावन, और भगवदी जो रसिक जन भक्त जन गोपी ग्वाल बाल हैं उनकी चरण रज से पवित्र जो श्रीधाम वृंदावन है, इस श्रीधाम वृंदावन में और भगवान गोचारण कर रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। एक महात्मा सुनाते थे, सुनाते हैं अभी भी विराजमान है, कहते हम बचपन में गिरिराज जी रहते हैं, 50-60 वर्ष पहले की बात सुनाई उन्होंने संत तो लेके स्थान में ब्रज के लोग परिक्रमा करने गिरिराज जी की आते, तो विचित्र भोले भाले ब्रजवासी, वो पुराने जमाने में मृत पशु के चमड़े के जूते बनते थे, पुरानी जूतियां, तो जूतियों को कपड़े में लपेट के और झोला में रख लेती और उसी में रोटी रख लेती, टेंटी का अचार रोटी उसी में, और सिर पे रख के लाई और वहां धर गई, और जलते चलते कहते, ए रामदास बाबा जूती देखियो मेरी, कह के चली जाती पर कम, पर आती तो वहां बैठ करके अचार के साथ मोटे मोटे बाजरे के रोट खाती, गुड़ ले आती और छाछ ले लेती बाबा से, छाछ के साथ पाकर के फिर चली जाती। अब वो तो कुछ कूड़ा कचरा भी हो जाता कोई जहां बैठे, तो कहते कि हम बालक थे, हमने कहा कि मैया यहां हम सब साधु तेरे जूता रखाए वे बारे जूती रखाए जा, ऐसे कह के चली जाती है, शर्म नहीं आती है। तो वो कहती कि अरे रामदास या मोड़ाए कहां ते पकड़ लायो, ए ब्रजरज की महिमा नहीं जाने, हम ते कह रहे हो है के देख ये जूतन में रोटी बांध के लाई है, अरे तू जाने ना है ब्रज की गैया, ब्रज में याने घास चरी रज को सेवन कियो, और वो सेवा करते करते गोपाल जी को दूध पिबाते पिबाते शरीर पूरो कर दियो, और बाकी बनी जूती, फिर ये ब्रजरज में लोटी अब अपवित्र रह गई। बताओ ये ब्रजरज की महिमा ना जाने, हम तो उठपटांग बोले बाबा या मोड़ा है कहां ते पकड़ लाओ। कहते ऐसे बोलवे लग गए, कहते तब तो हम बालक थे हमारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब याद आता है कि एकदम बना बिना पढ़ी लिखी गांव की भोली भाली ब्रजवासिन उसको ब्रजरज में कितनी श्रद्धा, ये रजरानी है या रजरानी को कहे कि ये बताओ ये रज की महिमा ना जाने, बाबा क्या बोले। बाबा बोले कोई बात नहीं मैया तू चली जा, जान जावे को कसुदना यहां रहेगा सब या पतों पर जाएगी। कहने का तात्पर्य रज की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि इस रज को भगवान का निरावृत चरण तल का स्पर्श प्राप्त है। समय के अनुरूप परिवर्तन होता रहता, प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन श्री गिरिराज श्री ब्रजभूमि ब्रजरज और श्री यमुना जी इनमें भेद नहीं, वे श्री कृष्ण कालीन ही हैं। ऐसा मान करके जो इनका सेवन करते हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल, भगवान के इस सुंदर स्वरूप का जब श्रवण किया हरिशरणम, भगवान के सुंदर स्वरूप का जब आपने श्रवण किया तो मन में विचार करने लगे कि अरे वह सगुण साकार भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े मनोहर हैं, बहुत अभी तक तो केवल ज्योति का ध्यान करते हैं और भगवान तो बड़े सुंदर हैं, चलें भगवान से ही प्रेम करें, इच्छा हुई प्रेम करने की। लेकिन तुरंत आपके मन में आया, योगियों को अपने मन को रोकने का बहुत अभ्यास होता है, तुरंत आपके मन में आया कि अरे भाई वो तो सुंदर हैं और हम उनसे प्रेम करने गए तो प्रायः सुंदरता का गुमान जिनके भीतर होता है, सुंदरता का अभिमान जिनके भीतर होता है वो सबका आदर नहीं कर पाते। हम तो प्रेम करने जाएंगे और वो कहेंगे कि तुम जैसे दिगंबर बाबा जी से हम प्रेम नहीं करते, तो इधर भी निष्ठा हमारी छूट गई और उधर भी हमें कुछ मिला नहीं। तो इसलिए जब तक स्वभाव का पता, अभी केवल सुंदरता का पता चला, जब तक स्वभाव का पता नहीं चला तब तक हमें नहीं जाना चाहिए, मन को रोक के फिर बैठ गए। कालांतर में फिर व्यास शिष्य वहां आए, अब की बार एक दूसरे श्लोक का गायन किया, इसमें भगवान के दिव्य करुणामय स्वभाव का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, बकदैत्य की बहन बकी पूतना अपने पयोधरों में भयंकर कालकूट विष लगा करके लाई और उस दुष्टा ने भगवान के मुखारविंद में विष से सने हुए पयोधर को दे भी दिया। लेकिन कितनी भगवान की कृपा करुणा है, उस विषपान कराने वाली मारने का संकल्प लेकर आने वाली उस पूतना को वह गति प्रदान की जो धात्री को उचित थी। दूध पिलाने वाली धाय को जो गति मिलनी चाहिए वह गति भगवान ने प्रदान की, तो इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। यह सुनते ही सुखदेव जी विह्वल हो गए और उठ करके खड़े हो गए और व्यास जी के शिष्यों से पूछने लगे कि अरे भाई, ये बड़े सुंदर छंद आपने सुनाए, पुनः सुनाओ, पुनः सुनाओ, पुनः सुनाओ। आनंद में भरकर बार बार श्रवण करते और पूछने लगे, इतने सुंदर श्लोक कहाँ से कंठस्थ किए? बोले, हमारे गुरुदेव ने 18,000 श्लोकों की रचना की है, बहुत बृहद ग्रंथ बनाया है, परमहंस संगीता श्रीमद भागवत महापुराण, उसमें ऐसे ऐसे बहुत श्लोक हैं, हमको तो 2-4 श्लोक कंठस्थ कराए हैं। संपूर्ण ग्रंथ का बोध तो वे उनके एक परमहंस कोटि के पुत्र हैं, सुखदेव उन्हें प्रदान करेंगे। आप प्रसन्न हो गए। बोले, वाह, आप लोगों के तो गुरुजी हैं, हमारे तो पिता हैं। अब तक संबंध नहीं था, अब भक्ति प्रकट भई तो संबंध हो गया, क्योंकि प्रेम चाहिए। भक्ति में संबंध मुख्य है, ज्ञान में संबंध शून्यता है, लेकिन भक्ति में संबंध मुख्य है, भगवान से संबंध। संबंध जागृत हो गया और आप पुनः आए और आकर के अपने पिता के चरणों में बैठ करके भागवत का आपने श्रवण किया। श्री व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनके चित्त में संतोष नहीं था, वे उदासीन होकर बैठे थे। जीव जगत का कल्याण जैसा हमारे द्वारा होना चाहिए था, वैसा कल्याण अभी वस्तुतः हुआ नहीं है, इस बात को लेकर के वे उदास थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवर्षि श्री नारद जी महाराज वहां पधारे और नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, आप महाभाग हैं। महाभाग कौन है? जिसने भगवान में अपने चित्त को रमा रखा हो वही महाभाग है। आप महान भाग हैं, निरंतर भगवत चिंतन करने वाले हैं। आपके कर्म से आपका शरीर और आपके चिंतन से आपका मन, ये दोनों पूर्ण स्वस्थ हैं कि नहीं? ये प्रश्न ही क्यों किया जा रहा है कि स्वस्थ हैं कि नहीं, इसका मतलब कहीं न कहीं अस्वस्थता दिखाई पड़ रही है, इसलिए पूछा जा रहा है। आपका स्वरूप देखकर लगता है कि आप उदास हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। यदि यह कहो कि जब तक तत्व का अपरोक्ष अनुभव नहीं होता, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव जब तक नहीं होता, तब तक जीव को कृतार्थता नहीं आती, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आपको तत्व का बोध नहीं हुआ। यथार्थ बोध आपको नहीं हुआ, यह आपके संबंध में नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्तम सर्वार्थ परिवृंहितम। जिज्ञासा किसकी करनी चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासितव्य तत्व जो ब्रह्म तत्व है, उस तत्व को आप भली भांत समझ चुके हैं, फिर अकृतार्थता क्यों है? और यदि आपने ब्रह्म तत्व को भली भांति न समझा होता, तो महाभारत जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना आप नहीं कर सकते थे। ये बात जो है वस्तुतः अपने में बहुत वजनदार बात है। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ न भूतो न भविष्यति, कोई विषय नहीं छोड़ा गया जो न हो महाभारत में। यहां तक प्रसिद्धि है, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत ग्रंथ में जिसकी चर्चा नहीं उसकी चर्चा कहीं नहीं। आकर ग्रंथ है महाभारत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, वैष्णव धर्म, समस्त प्रकार के धर्मों का वर्णन है, समस्त प्रकार की नीतियों का वर्णन है, समस्त प्रकार के दर्शनों का वर्णन है, समस्त प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन है। वस्तुतः अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। आज लोगों के पास समय का अभाव होता चला जा रहा है, व्यस्त जीवन होता चला जा रहा है, हम लोग अपने दिव्य ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनसे वंचित होते चले जा रहे हैं। महाभारत को कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत दिव्य ग्रंथ है व्यास जी का महाभारत, और सबसे बृहद आकार में भी यही है। भगवान की कृपा से गीता प्रेस से संक्षिप्त भी प्रकाशित है दो भागों में, तो महाभारत की कथाओं के ज्ञान के लिए और काफी पर्याप्त चर्चा संक्षिप्त महाभारत में भी आ चुकी है। और बृहद रूप से कोई पाठ करना चाहे या पढ़ना चाहे तो अनुवाद समेत भी प्रकाशित है। बहुत दिव्य ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद भी उदासीन है, इसका क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, भगवान आपने हमारे संबंध में जो कुछ कहा वह ठीक ही है, लेकिन इसके बाद भी हम इसका समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। आप तो सूर्य नारायण के समान त्रिभुवन में विचरण करते रहते हैं, आप परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों में निष्णात हैं, इसलिए आप कृपा करके न्यून मलम विचक्षो, हमारे भीतर जो कमी है उस कमी को आप ही बताइए। अपनी कमी अपने को नहीं दिखते, दूसरे महापुरुष कमी बता सकते हैं, तो आप कृपा करके हमारी कमी को बताइए। नारद जी हंसने लग गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपको तो सबका ज्ञान है, ये केवल गुरु शिष्य परंपरा का आदर करने के लिए ही आप अज्ञानी की तरह यह बात पूछ रहे हैं। मेरे विचार से आपकी उदासीनता का, चिंता का, दुख का, अवसाद का यही कारण है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया है। प्रायः नहीं किया का तात्पर्य, किया तो है लेकिन प्रधान रूप से भगवान के यश का वर्णन नहीं किया है। और जहां भगवान के सुयश का प्रधान रूप से वर्णन न हो वह शास्त्र भी अधूरा है और वह ज्ञान भी अधूरा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों को, यज्ञ जप तप व्रत दान तीर्थाटन आदि को जैसा आपने बहुत महत्व दे करके पुराणों में वर्णन किया है, ऐसे ही प्रधान रूप से भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया। माने उसके साथ ही साथ भागवत धर्म का वर्णन तो हो गया, प्रधान रूप से वर्णन नहीं हुआ। हमारे ब्रज के लोग तो कहते हैं, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज कहते भैया या को मतलब है के अभी तक तो व्यास जी आपने बरातिन के गीत गाए हैं, दुल्हा के गीत नाए गए, ये कसर रह गई है। पंडित जी अपनी भोरी भारी भाषा में कहते कि दुल्हा के गीत गाए वो अभी बाकी है। बड़े महापुरुष थे पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, हमारे वृंदावन की विभूति थे। वो कहा करते, ये सब बराती हैं, इनकी महिमा गाई, भगवान सबके जो दुल्हा हैं उनकी महिमा आपने नहीं गाई, इसलिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। देखो किसी की वाणी रस छंद अलंकार से युक्त है, लेकिन उस वाणी में, उस ग्रंथ में, उस काव्य में भगवान का यश नहीं है, तो उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को संत लोग वायसम तीर्थम उशंती, कौए को जूठन फेंके जाने वाला स्थल जैसे अपवित्र होता है, ऐसा अपवित्र मान करके और उसको वे त्याग देते हैं। जहां कौए जूठन खा रहे हो वहां हंस विहार करने क्यों आएगा? मान सरोवर में विहार करने वाला, मुक्ताहल चुगने वाला हंस जूठन खाने कौओं के साथ नहीं आ सकता। ये विषय की जूठन जहां भोगी विषय लोग खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, वहां ये हंस, संत हंस गुन गहई पय परिहरि वार विकार, ये संत ही हंस हैं, ये संत वैष्णव वहां क्यों जाने लग गए? और भले ही किसी का काव्य रस छंद अलंकार से युक्त नहीं है, लेकिन भगवान का यश उस ग्रंथ में वर्णित है, तो तो कहते उस उन ग्रंथों को उन काव्यों को संत बड़ा आदर देते हैं। नामान्यनंतस्य यशोंकितान यत् श्रणवंति गायन्ति गृणन्ति साधवः। वे बारंबार उन शास्त्रों का श्रवण करते हैं, गाते हैं और गृणन्ति उनका कीर्तन किया करते हैं, उन्हीं को गुनगुनाते रहते हैं। श्रणवंति का तात्पर्य है वक्तरि सति श्रणवंति, श्रोतरि सति गायन्ति और उभयाभावे सति गृणन्ति। वक्ता मिल जाए तो सुनने लग जाते हैं, श्रोता मिल जाए तो कहने लग जाते हैं, और दोनों ना हो तो अपने में ही भगवान की लीला में डूबे रहते हैं, लीला चिंतन में डूबे रहते हैं। इस प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, श्रणवंति गायन्ति गृणन्ति साधवः। श्री प्रयागदास जी नाम के एक बड़े सिद्ध संत हुए, मामा प्रयागदास, बड़े अलमस्त संत। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। खाट और खाट के नीचे करवा रखा है, आप मस्त सो रहे थे, किसी ने जगा दिया, अरे बाबा भजन करना चाहिए। कहते भजन करे भगत दुनिया, जिसको चिंता हो हमारी चिंता भगवान करें, हमको अपनी चिंता नहीं। क्यों? बोले हम राम जी के साले साहब हैं, राम जी हमारे बहनोई हैं, तो हमारी चिंता वो करें, हम तो किशोरी जी के भाई हैं। ऐसा भगवान का आश्रय उन्हें प्राप्त हो गया मुलुक श्री प्रयागदास जी में। तो प्रयागदास जी के जो काव्य हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो एकदम थक्कड़ साई रचनाएं हैं, उनमें कोई विशेष रस छंद अलंकार की बात नहीं उन्होंने, क्योंकि कोई ऐसी काव्य की शैली उसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद भी संतों की समाज में उनकी वाणियों का आदर है। हरि हरि केशवा जपत महेशवा कटत कलेशवा भजनवा से, ये प्रयागदास जी की वाणी। अब इसमें कोई कहे कि बहुत बड़ी कवित्व तो शक्ति है या बहुत बड़े रस छंद अलंकार की बात है, सो नहीं, सीधी साधी भाषा में हरि हरि केशवा, हरि हरि केशवा क्या बोले, जपत महेशवा, शंकर जी भजन करते हैं, कह भजन तुम भी करो, क्यों, कटत कलेशवा भजनवा से, भजन से कलेश कट जाता है। प्रयागदास प्रहलदवा खातिर रघुवर हुई गए भगवारे। प्रयागदास कहते हैं रघुवा प्रयागदास प्रहलदवा खातिर प्रहलाद जी के लिए रघुवर हुई गए भगवारे। अब देखो ज्यादा कोई कवित्व शक्ति इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन भगवान का चरित्र है तो आज भी वे काव्य सुरक्षित हैं, आज भी उनको गाया जा रहा है, संत आदर पूर्वक उनकी वाणियों का पाठ करते हैं, उनके पदों का गायन करते हैं। और विद्वान लोग इस बात को जानते हैं, साहित्य में बड़े रसमय ग्रंथ हैं और वे ग्रंथ परीक्षाओं में स्वीकृत हैं, इसलिए चल रहे हैं। और कितने साहित्यकारों के ग्रंथ लुप्त हो गए, तमाम काव्य, तमाम नाटक, तमाम एकांकी लुप्त हो गए। क्यों लुप्त हो गए? उनमें प्राकृत नायक नायिका का वर्णन था, इसलिए लुप्त हो गए। और भगवान का जिन काव्यों में वर्णन है, वे आज भी वैष्णवों के हृदय हार बने हुए हैं, जो लुप्त नहीं हो सकते, जब तक सृष्टि है तब तक रहेंगे, क्योंकि उनमें भगवान के यश का वर्णन है, ये महिमा है। रस शास्त्र, साहित्य शास्त्र में कम अच्छे अच्छे श्लोक नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया छंद है, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं।